माँ बेटी के पास मोबाइल में व्यस्त मस्त रहने को वक्त ही वक्त था। नए मोबाइल से माँ ने मुग्धा की तस्वीरें खींची तो मुग्धा अपने पर मुग्ध हो गई। ओ मॉम, मैं ऐसी लगती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। किशोरी बिटिया ने दुपट्टा बदलकर, टॉप बदलकर, केश सज्जा बदलकर तरह तरह से अपने फोटो खिंचवाए और अपने पर लट्टू होती गई। किताबें पढ़नी कम हो गई, वो मोबाइल लेकर बैठी रहती, कभी आईना लेकर अपनी सूरत निहारती, वो तरह तरह से बालों को घुमाती और क्लिप लगाती, वो पढ़ाई में सुस्त और फैशन में चुस्त होती गई। कभी कभी विक्रम सिंह उसके रिपोर्ट कार्ड पर चिंता दिखाते, कीर्ति तुम ध्यान नहीं देती, इन नंबरों से इसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे हो पाएगा। माँ अपने बालों को झटका देकर कहती, इतनी निजी संस्थाएं हैं, कहीं से भी डिग्री दिला देंगे, ये पिच पर गई है बिल्कुल। मेरा मन भी किताबों से दूर भागता था। पिता के पास बहस का ज्यादा वक्त न होता, विक्रय की गला काट स्पर्धा ने उनकी सारी ऊर्जा चूस रखी थी। देखते देखते समय बीतता गया, माँ बाप अधेड़ हो गए, मुग्धा सयानी हो गई, उसके रूप का चर्चा खास परिवारों तक पहुंचा। नगर के एक सुसंस्कृत परिवार के बड़े बेटे नमित का प्रस्ताव आया मुग्धा से रिश्ते के लिए, तब माँ बाप को गौर करना पड़ा कि सही उम्र पर लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। मजे की बात यह है कि न मुग्धा के माँ बाप और न नमित के माँ बाप अपने को इतना उम्र दराज मानते थे कि उन्हें बच्चों के विवाह करने पड़े, लेकिन क्या किया जाए कि बच्चे जवान हो गए थे। नमित कई छोटी बड़ी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर जीवन बीमा निगम में स्थायी नौकरी पा गया था। मुग्धा के टाइम टेबल में नौकरी की जगह नहीं थी, उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर लिया था। वो अपनी माँ की तरह चैन की जिंदगी जीना चाहती थी। वे सभी प्रेसिडेंसी होटल में मिले। पहली नजर में नमित और मुग्धा परस्पर आकृष्ट हुए। बात पक्की हुई, 2 महीने बाद शादी थी। नमित और मुग्धा मिलते रहे, कभी सिविल लाइंस में, कभी कान्हा श्याम में। नमित ने गौर किया, मुग्धा के पास 2G रैम वाला ओप्पो मोबाइल है। उसने उसके लिए सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदकर उसे भेंट किया। दरअसल में दोनों रात में लंबी चैट किया करते। मुग्धा ने गौर किया, नमित टाइमिक्स की घड़ी लगाता है। उसने उसे स्मार्ट बैंड खरीद कर कलाई पर पहना दी कि ये तुम्हारी सेहत, समय और ऊर्जा शक्ति का ध्यान रखेगी। जब वे मिलते, एक दूसरे की अनेक तस्वीरें क्लिक करते, अलग होने से पहले सेल्फी ली जाती अलग अलग कोणों से। मई के महीने की शादी थी। यूं तो जिस होटल में शादी की रस्म होनी थी पूरा वातानुकूलित था, लेकिन गहनों और कपड़ों की गर्मी से मुग्धा का बुरा हाल था। उसने अपनी सहेलियों से कह दिया था कि वे हर रस्म की ढेर सी तस्वीरें उतारें और सीधे उसे फॉरवर्ड करें। सौंदर्य संवारने वाली विशेषज्ञ को कीर्ति ने पूरी रात के लिए अनुबंधित किया कि दुल्हन का केश विन्यास बार बार बदले। जैसी होटल की परंपरा थी, उन्होंने उस रात नवविवाहितों के लिए हनीमून कक्ष की भी सुविधा प्रदान की। सब कुछ भव्य और दिव्य रहा। विवाह संपन्न हुआ। मेजबान समृद्ध थे और उनके मेहमान भी। सब अपनी अपनी कारों में वापस चले गए। हनीमून कक्ष में चादर पर फूलों का छिड़काव था। हर सिंगार के इत्र से कमरा महक रहा था। बिस्तर पर मसहरी की जगह फूलों की झालर तनी हुई थी। मुग्धा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी सज धज पर विमुग्ध सोच रही थी, पता नहीं सहेलियों ने ठीक से फोटो खींचे भी या नहीं। ये यादगार ड्रेस और मेकअप अच्छी तस्वीर की मांग कर रहे हैं। तभी नमित कमरे में आया। उत्सव की उमंग और तरंग में वो भी थोड़ा क्लांत हो चुका था। उसने मुग्धा को बाहों में भर कर कहा, अब तुम्हें मुबारकबाद कहने का नंबर आया। बाय गॉड, शादी की रस्में जानलेवा होती हैं। मुग्धा के हाथ में मोबाइल था। उसने जल्दी से नमित की एक फोटो क्लिक की और कहा, मैं आज कैसी लग रही थी? नमित ने उसे कमर से भींच कर कहा, बिल्कुल अप्सरा डार्लिंग, मेरी शादी तो एक साथ कई फिल्मी नायिकाओं से हो गई, तुम इतनी सुंदर हो। मुग्धा पर अपने रूप का नशा चढ़ने लगा। उसने नमित को गालों पर सहलाते हुए कहा, जान एक काम करें, तब सब रिश्तेदार जा चुके हैं, हम होटल की छत पर जाकर एक सेल्फी लें अपनी दोनों की। इतनी भारी सजावट जिंदगी में एक ही बार होती है। बहुत देर हो गई, होटल वाले क्या सोचेंगे, छोड़ो मुझे नींद आ रही है, जैसे तर्कों को मुग्धा ने गलबहियां डालकर परास्त कर दिया। वे दोनों कमरे से निकले, लिफ्ट से वे आठवीं मंजिल पर पहुंचे। नवी मंजिल पर छत थी जहां सीढ़ी चढ़कर जाना होता था। दरअसल ऊपर बेरों के लिए कुछ कमरे बने हुए थे, इसलिए छत खुली रहती थी। छत की मुंडेर नीची और नुकीली थी। बेरों के कमरों में सन्नाटा था। वे या तो नीचे से अभी ऊपर नहीं आए थे अथवा गहरी नींद में लुढ़क चुके थे। मुग्धा के ऊपर मोबाइल और मोहब्बत की दीवानगी का नशा था। वो छत के अलग अलग कोनों में महारानी अंदाज में खड़ी होकर फोटो खिंचवा रही थी। फिर उन दोनों ने सेल्फी लेना शुरू किया। नमी, नमी प्लीज, अपन दोनों के साथ चांद को भी फोकस में लो ना, मुग्धा ने कहा। वो थोड़ी पीछे हटी, तभी उसके पैरों का संतुलन बिगड़ा और वो मुंडेर के नीचे नवी मंजिल से नीचे सनसनाती हुई जा गिरी। नमित ने उसे थामने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ मुग्धा का सिर्फ लाल दुपट्टा ही आया। गाथा में आप सुन रहे थे ममता कालिया की कहानी मोबाइल मोहब्बत या मोबाइल हनीमून। गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शिफाली कपूर ने।